بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام صبح زندگی. میں اور رباب منصوری یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. کیسے ہیں؟
شکریہ خورم, سلام کر سکتی ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے عزیز و پیارے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. امید کرتی ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں گے, ہمیشہ کی طرح انرجی سے بھری ہوئی صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے.
بالکل آپ نے صحیح کہا, اور انرجی آپ کے اندر آ جائے گی جب آپ پروگرام صبح زندگی سہار 2 کی طرف سے دیکھیں گے. امید کریں گے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا
انشاءاللہ.
چلتے ہیں جلدی سے, کہاں چلتے ہیں؟
جی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ تاکہ ہمارا جو آج کا دن ہے اس حدیث کے ساتھ بن سکے اور بھی خوبصورت. جی
تو چلتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, ملاحظہ فرماتے ہیں.
جی ناظر, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں یہ خوبصورت سی حدیث آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے.
بڑی اچھی بات کی آپ نے, پسند آنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ حدیث دکھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی, آپ لوگ بھی, ہم لوگ کوشش کر سکیں کہ جتنا ہو سکے برائیوں سے بچیں اور اتنا جو ہے
نیکیوں
کی طرف آ سکیں. بالکل ٹھیک. اچھا تو ہمارے پاس وقت ہوا ہے ابھی کہ ہم لوگ جائیں, کہاں پر جائیں؟ ہمارے پاس وہ ہے پروگرام ہے سیب صاحب کا, اور سیب صاحب جو ہے آج بڑی دلچسپ چیز کے بارے میں بالکل, وہ چاولوں کے اوپر کچھ چھٹکائی جاتی ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں, بہرحال اس کو, اس کا نام جو ہے رس بیری انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے, اور اردو میں غالباً جو ہے اس کو تمشک کا نام دیا جاتا ہے, فارسی میں بھی اس کو تمشک بولا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں اور سیب صاحب کی باتیں سنتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. صرف یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ آج جو ہے ڈاکٹر جاوید حسین جو ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے, ان سے ہم گفتگو کریں گے بڑے ہی اہم موضوع پہ, ڈینگی وائرس کے بارے میں. اور آپ کن سے بات کریں گے؟
ہمارے ساتھ فون لائن پہ جو ہوں گے مولانا عقیل صاحب معروفی ہوں گے انشاءاللہ, اور ہم ان سے بات کریں گے, مذہبی امور کے ماہر ہمارے ساتھ انشاءاللہ فون لائن پہ ہوں گے.
چلتے ہیں سیب صاحب کی گفتگو سنتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پروگرام صبح زندگی آگے چلائیں گے.
ناظرین السلام علیکم, آج ہم آپ کو تمشک سے متعارف کرائیں گے. جی ہاں, اس پھل کو انگریزی میں رس بیری کہا جاتا ہے. یہ پیلے یا سیاہی مائل سرخ رنگ کی ہوتی ہے. اس کا مزہ کھٹا ہوتا ہے. اس کا شربت, مربع یا کمپوت بنا کر استعمال کیا جاتا ہے. کمپوت ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ شکر کے ساتھ, یعنی شکر کو پانی میں گھول کر اس پھل کو اس میں ڈالیے اور تھوڑی دیر ابالیے, پھر جو پانی اور پھل تیار اندر ہوتا ہے اسی کو کمپوت کہتے ہیں. تمشک کی جھاڑی گرم اور مرطوب علاقوں, جنگلوں اور صحراؤں میں اگتی ہے, اور کہیں کہیں پر اسے بویا بھی جاتا ہے. اس کا تنا اور شاخیں سرخ رنگ کی اور نرم ہوتی ہیں, اور ان پر لمبے کانٹے ہوتے ہیں. اسے جنگلی توت بھی کہا جاتا ہے. تمشک جراثیم کو پھیلنے سے روکتی ہے. اس کے بہت سے خواص اسٹرابیری جیسے ہوتے ہیں. اس میں وٹامن سی اور کے پایا جاتا ہے, اس لیے یہ یورک ایسڈ اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت مفید ہے. یہ خون کو صاف کرتی ہے اور جوڑوں کے درد میں بہت فائدہ کرتی ہے. تمشک کے بیج عام طور پر دانتوں سے بھی نہیں ٹوٹتے, لیکن اگر انہیں کھا لیا جائے تو قبض کو مکمل طور پر دور کر دیتے ہیں. تمشک کے پھولوں یا پتیوں کو ابال کر اس پانی سے کلی یا غرارہ کرنے سے منہ کے زخم, مسوڑوں کے ورم, گلے کے درد اور ٹونسلز کے ورم اور درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے.
ناظرین دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تمشک کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں جانی, اور یہ کہا گیا کہ تمشک کو اگر ابال کے غرارے کیے جائیں تو آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا. اس بات کا خاص خیال رکھیں, بہار کا موسم ہے, گلا خراب ہوتا رہتا ہے, الرجیز ہوتی رہتی ہیں, تو یہ ایک خوبصورت سا ٹوٹکا اپنے ذہن میں ضرور رکھے گا. خیر ناظرین میں زیادہ باتیں نہ کروں, چونکہ وقت ہو گیا ہمارے گفتگو کے سیگمنٹ کا. چلتے ہیں خورم کے پاس تاکہ وہ خوبصورت سے گفتگو کو آغاز کر سکے. جی خورم,
بہت شکریہ. ویسے بہرحال جو ہے آپ نے جو ہے ڈاکٹر صاحب کی جگہ سنبھال لی ہے, آپ غراری شراری کی باتیں کر رہی ہیں, تو میرے خیال میں آپ یہ جاری رکھیں. हमारे साथ जो है डॉक्टर जावेद हुसैन यहाँ पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं वो आज बड़े ही अहम मौजूद, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेंगी वायरस या डेंगी का बुखार जो है जो बहुत ज़्यादा आम होता चला जा रहा है, उसके पर डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो बात करेंगे। तो चलते हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं और गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब।
वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया।
शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बड़ी जो है
हम हाज़िर हैं आपके लिए, आप जब भी चाहेंगे मोस्ट वेलकम।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहरहाल जो है आपका पहला प्रोग्राम है हमारे सार उर्दू टीवी में, और आपका बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ।
थैंक यू वेरी मच,
बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए।
बहुत शुक्रिया जी।
डॉक्टर साहब बड़ा ही अहम मौजू डेंगी फीवर, डेंगी वायरस या डेंगी का बुखार, इसके बारे में जो है पहले तो ये बताएं कि डेंगी जो है वायरस है क्या?
एक्चुअली डेंगी वायरस जो है, डेंगी वायरस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और ख़ुद जो वायरस जो है ये मॉस्किटो में पाया जाता है।
ठीक है।
और मॉस्किटो जो है उसकी दो किस्में हैं, यानी एक मच्छर है,
ठीक है,
उस मच्छर की दो किस्में हैं,
जो दोनों जो है ये वायरस
दोनों में से एक में ये ज़्यादा प्रेवलेंस है, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। जिसकी जो पहली जो उसकी टाइप है उसमें वो ये है कि एडीज एजिप्टाई उसको बोलते हैं जी,
नाम है इसका।
जी इसका एडीज एजिप्टाई है जिसमें ये पाया जाता है,
ज्यादा पाया जाता है,
ज्यादा पाया जाता है, और मोस्टली इसी में ही पाया जाता है जी।
सही है।
दूसरी टाइप जो है वो एडीज एडीज उसमें आता है वो एप्टो क्लिपिटस आता है उसमें,
जी जी, जिसमें ये कम पाया जाएगा।
जी उसमें कम पाया जाता है। एक्चुअली ये सारा कुछ इसका जो जितना भी पाया जाता है वो एडीज एजिप्टाई में पाया जाता है। जी, और ये एक चूंकि वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है जिससे हेमरेजिक फीवर भी हो जाता है।
अच्छा।
अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए।
ठीक है।
1950 में सबसे पहले जब ये फिलिपाइन में जो बच्चे थे छोटे 12 साल से ज्यादा थे उनके ऊपर अटैक किया एक डिजीज ने।
ठीक है।
तो उस डिजीज में बुखार में जब उन्होंने वायरस डिटेक्ट किया तो उसमें उन्होंने देखा कि ये रिलेटेड टू डेंगी है।
ठीक है।
डेंगी से उससे शबाहत मिलती थी जी।
ठीक है, सही है।
ठीक है। उसके बाद ये 20 साल पहले यानी इसने अटैक किया था अमेरिकन लैटिन्स पे किया था,
उनकी जो पॉपुलेशन थी
जी जनूबी अमेरिका आता है उसमें आता है, फिर इसमें एशियन कंट्रीज आते हैं जिसमें श्रीलंका पाया गया उसमें, इसमें श्रीलंका में, इंडिया में आजकल है, पाकिस्तान में तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड रहा है हमारे यहाँ अभी तकरीबन 2-3 साल से, 2009 से 2009 से अभी तक स्टिल वहाँ पर डेंगी वायरस है।
हाँ,
कंट्रोल है लेकिन फिर भी हैं उसके पेशेंट पाए जाते हैं। इवन कुछ केसेस मैंने ईरान में भी देखे जी, ईरान में भी पाए गए डेंगी फीवर।
ठीक है, ईरान में भी है।
हाँ जी है।
डॉक्टर साहब ये सुनने में तो यही आया था कि ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ये वायरस शुरू हुआ है और ये जैसे आपने बताया कि 1950 में फिलीपीन से शुरू, इसका मतलब इसकी जो है एक तारीख
है, बिल्कुल हिस्ट्री है इसकी, जिसमें लैटिन अमेरिका में इन्होंने सबसे पहले किया था, वहां पर भी किया था। बिल्कुल जी, अफ्रीका में इसका बहुत है, ये ऐसे इलाके हैं जो बैकवर्ड होते हैं थोड़े से, या वहां पर जो एक जो ना उसकी जो हाइजीनिक सिस्टम ठीक नहीं होता, हाँ उससे भी होता है। दूसरे नंबर पर जो एक सबसे जो मुनफरिद पॉइंट है डेंगी फीवर का वो ये है कि ये जो साफ पानी होता है जो स्टैग्नेंट हो जाता है एक जगह पे खड़ा होता है ये उससे होता है जी।
ठीक है। असल वजह इसकी खड़ा हुआ पानी
जो होता है ये टायरों में होता है या जो अपना ये जो बॉक्सेस होते हैं या प्लास्टिक के तालाब हो गए जी, एनी स्टैग्नेंट वाटर, लेकिन क्लीन वाटर।
अच्छा,
क्लीन वाटर में इसका यही तो मसला है इसका जी, जो डर्टी वाटर होता है जो गंदा पानी जिसको बोलते हैं मार्शल एरियाज में होता है उससे होता है वो मलेरिया वगैरह होता है जी।
सही है।
इसका जो एक मुनफरद पॉइंट ये है कि ये साफ पानी से होता है।
अच्छा, ये
बंदे को पता नहीं चलता,
हाई क्लास किस्म का हाँ, मच्छर है।
जी जी जी,
हाई क्लास किस्म का, साफ सुथरी
पे अटैक करता है जी। और इसमें कोई नहीं, इसमें अमीर लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, गरीब लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो साफ पानी का है तो वो बंदे को केयर करनी चाहिए कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए।
अच्छा, इसका मतलब ये तो कहीं भी घर में पानी अगर साफ भी खड़ा हुआ है,
बिल्कुल
क्यारी में कहीं पर पौधों शौधों के पास,
उसमें इसका लार्वा प्यूपा जो होता है उसका ग्रो करता है साफ पानी में।
तो डॉक्टर साहब ये क्या मसलन, अच्छा जैसे आपने कहा कि 1950 से ये है, क्योंकि मुझे हमेशा ये मेरे ज़हन में सवाल उठता था कि ये जी एकदम से ये कोई नई चीज कैसे बन गई।
इवन 1950 में जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तहकी की थी उसमें जो बच्चे इन्वॉल्व थे उनमें जो वो बच्चे थे वो पहले भी एक फीवर का इन्वॉल्व ऑलरेडी हो चुके थे, उसमें भी उन्होंने डेंगू कहा था, उससे भी पहले की इसके आसार
उससे पहले भी है, लेकिन जो मेरे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो
1950 में फिलिपाइन में बच्चों को देखा। हमारे पास इसका हैरिसन में भी हमारी जो टेक्स्ट बुक में मेंशन किया, मैंने मेडिकल के हैरिसन वालों ने मेंशन किया हुआ है 2008 एडिशन में 17, उसके बाद तो इसका बहुत ही कुछ हो गया ना, अभी हमारे पास बहुत से एविडेंस बेसिस पे आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे हैं, अब तो इसमें लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है,
ठीक है,
क्योंकि इससे बहुत सी अमवात पाकिस्तान में वाकया हो चुकी हैं, जिनके लिए मैंने खुद बहुत से पेशेंट्स को ट्रीट भी किया, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से हमारे ऑप्शंस थे कि हमने उनको अटेंड किया।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, यहाँ पर छोटा सा हमने एक वक्फा लेना है और डेंगू वायरस के बारे में डॉक्टर जावेद हुसैन हमारे साथ बात कर रहे हैं और जैसे कि डॉक्टर साहब ने एक बड़ा अहम नुकता बताया वो ये है कि साफ पानी, हत्ता साफ पानी, अलबत्त इन्होंने कहा है कि सिर्फ साफ पानी में, डेंगू वायरस का जो मच्छर है वो सिर्फ साफ पानी में ही जो है वो बारह पैदा होता है, तो ये बड़ी जो है खतरनाक किस्म की बात है। अलबत्त ये हमारे बहुत से नाज़रीन को पता होगा, खासतौर जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है डेंगू वायरस ने बड़ी बुरी तरह हमला किया। गुफ्तगू हम जारी रखेंगे डॉक्टर जावेद हुसैन के साथ, अभी यहाँ पर चलना है हमने रुबाब के पास, तो देखते हैं रुबाब हम कहाँ पर लेके जा रही
हैं। शुक्रिया खुरम, और कहीं जाने से पहले मैं कुछ नाज़रीन के जो कमेंट्स वो पढ़ लेती हूँ। एम खान लगारी साहब ने कहा है सलाम खुरम और रुबाब, वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने लिखा है जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बेशक अल्लाह उनको पसंद करता है जिनसे इम्तहान लेता है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत आपने जो है कमेंट किया। इसके अलावा और भी हमारे पास कमेंट्स आए, ताहिर रजा साहब ने डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया है, कहा है बहुत ही मुफीद गुफ्तगू चल रही है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक वक्फा लेने का, और वक्फे में हम देखेंगे खूबसूरत सी दास्तान भोलूल साहब की, और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं, उम्मीद करते हैं खूबसूरत दास्तान जो आपने देखी आपको पसंद आई होगी। हमारी गुफ्तगू चल रही है डॉक्टर जो हमारे साथ है डॉक्टर जावेद हुसैन साहब से चल रही है, और डेंगू वायरस के बारे में जो है डेंगू फीवर जो हम बोलते हैं उस बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक बहुत अहम मसला ताकि हम नाज़रीन को उस बारे में बता सकें या जानकारी दे सकें कि किस कदर ख़तरनाक है। चलते हैं खुरम की तरफ ताकि गुफ्तगू को जारी रख सकें। जी खुरम,
बहुत शुक्रिया, ये इजाज हुसैन साहब का जो है नाम आपकी ज़बान पर आके और जो है वापस हो गया,
पढ़ी थी आपने याद दिला दिया, मैं माजर के साथ भूल गई इसको। कमेंट कुछ इस तरह कल इनकी उनकी बेगम की थोड़ी नोकझोंक हो गई है, क्योंकि कल हमने जो बात की वो खवातीन के हुकूक के बारे में बात की, एक बीवी के हुकूक के बारे में बात की, तो जो है इन बेगम में और इनके शोहर में थोड़ी सी जो नोकझोंक हो गई है, तो मैं इनको बोलती चलूँ कि आप जुमेरात का प्रोग्राम ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह हम अमीर उल मोमिनीन अलैहि सलाम की ज़िंदगी के ऊपर पूरी तरह से जो है रोशनी जुमेरात के दिन डालेंगे, तो हमारा जुमेरात का प्रोग्राम आप मिस मत कीजिएगा।
बिल्कुल सही, और उनके हुस्न सलूक पर भी रोशनी डाली जाएगी, और ये भी हमें बताएंगे हम आपको कि क्यों जो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ मौला कायनात इमाम अली अलैहि सलाम का रिश्ता कबूल किया था बीवी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के, तो उस सिलसिले में भी बात करेंगे। चल हमारे साथ डॉक्टर जावेद हुसैन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, डेंगू बुखार उसके पर बात हो रही है, क्योंकि मौसम जो है दोबारा डेंगू के बुखार की तरफ जा रहा है। डॉक्टर तो ये डॉक्टर साहब ये मौसम की बात निकली, तो ये भी बता दें कि किन माहों में हमें जो चाहिए ज़्यादा ख्याल रखें।
ये किसी भी सीज़न में हो सकता है, लेकिन इसका जो एविडेंस प्रिवेलेंस होगा जो ज़्यादा होगा ये बरसात के मौसम
होते
हैं, क्योंकि उसी मौसम में पानी मोस्टली रुक जाता है, लोग केयर नहीं करते जी, तो वो बेहतियाती तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर इंसान केयर करने के बावजूद कुछ पानी रुक जाता है जी, जिसके चांसेस होते हैं।
अरे ये बिल्कुल, ये जो आपने बात की कि हर किसी भी महीने में हो सकता है, क्योंकि ये साफ पानी से है,
एग्जैक्टली
इसका इतना वो ज्यादा ताल्लुक नहीं है बरसात का महीना हो या बहार का, क्योंकि हम नॉर्मली हम कहते हैं बहार और गर्मियों में जो है मच्छर आ जाते हैं मलेरिया के, लेकिन ये क्योंकि अच्छा डॉक्टर साहब बड़ी अहम चीज और वो ये है कि एक यहाँ से शुरू करते हैं
जी जी,
कि कैसे रोका जाए इस मच्छर को पैदा होने से, या अगर पैदा हो जाता है तो इसको जो है कैसे मारा जाए, ये भी बेसिक सा सवाल बुनियादी सवाल।
प्रिवेंशन में जो आता है इसके ये आता है कि देखिए हमारे पास प्रिवेंशन के लिए एक तो ये है कि सबसे पहले इसका जो लार्वा प्यूपा की स्टेज है ना,
ठीक है,
उसको रोकना है हमने,
जो उसको वो बच्चा अंडे टाइप की
ग्रोथ ही ना हो उसकी, उसके लिए ये है कि इसके जो केमिकल स्प्रे हैं
ठीक है
उसका छिड़काव वगैरह होना चाहिए,
ठीक है,
बड़ा अच्छे तरीके से और रेगुलर होना चाहिए जी, ठीक नहीं ये
नहीं। इसके खास स्प्रे हैं, फिर
इसके स्प्रे हैं, इसमें बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं कुछ है। इसमें मेलाथियन आता है, नोवोक्रेन आता है, और बहुत से केमिकल्स हैं बायोलॉजिकली जो इसके ऊपर काफी इफेक्टिव हैं, और स्पेशली इन दिनों में जो इसका मार्गोमीर इससे बहुत ज्यादा हुई है, मौत अनुपात बहुत ज्यादा हुई है इसकी वजह से, तो बहुत सी कंपनीज ने इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, उन्होंने ऐसी कुछ मेडिसिन बनाई है, स्प्रे बनाए हैं कि जो बहुत ही इफेक्टिव हैं,
ठीक है, अच्छा,
और वो गवर्नमेंट की तरफ से उसके बड़े स्पेशल स्प्रे किए गए हैं,
ठीक है,
तमाम कंट्रीज में जिनमें ये इसकी अमवात ज़्यादा वाकई हो चुकी हैं,
ठीक है।
तो जी स्प्रे के अलावा इसके अलावा जो एक और प्रिवेंशन इसके लिए जो चंद मराइल और हैं वो ये है कि यही जो टायर्स वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है जी, जार्स हो चाहे गुलदान हो गए,
ठीक है,
उनको वो जो उनके नीचे जो वो पानी रुक जाता है या
है।
एक ऐसी चीज होती है कि वहाँ पर उसकी ग्रोथ होती है,
हाँ, ये ऐसी चीज़
उसकी जो ब्रीडिंग साइट्स होती हैं,
ठीक है,
जहाँ पर वो जी ब्रीड करता है,
ठीक है जी, बाहर रख देते हैं हम लोग कुछ बर्तन शर्तन हो गए या कोई टायर जैसे कि आपने कहा, और खासकर ये पंचर लगाने वालों के पास जो टायर पड़े,
बिल्कुल सबसे ज्यादा जो आजकल मेन इशू है वो एक्स्ट्रा टायर्स जो होते हैं गाड़ियों के हो गए, साइकिल के, किसी भी चीज के, वो जो होते हैं वो इसका बाहर
उसके अंदर पानी खड़ा हो जाता है।
बिल्कुल जी, उसको हमने हर तरीके से हटाना है। उसका स्टॉक वहाँ पर अंबार नहीं होना चाहिए,
ठीक है, सही
उनका जी।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने स्प्रे बताया ये हम खुद घर में कर सकते हैं कि या नहीं, किसी जो है खास किस्म के बंदे को बुलाना है?
इसमें नहीं, इसमें ये है कि अगर आप, वो हमारी कुछ टीमें होती हैं, लोग, ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से टीमें हैं, और भी कुछ लोग अवेयरनेस होगी
है,
वो रेंट पे आते हैं, थोड़े से पैसे ले लेते हैं जी,
ठीक है,
कुछ ऐसे भी वो फ्री भी कर देते हैं,
ठीक है, सही है।
आप खुद चाहें तो इसके स्प्रे मिल जाते हैं, वो खुद भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि मास्क वगैरह चढ़ाना होता है, थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, अपने लिए भी इंसान को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, बच्चों में स्पेशली इसकी एहतियात करनी चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं कि वो जो हमारी जो टीम्स हैं
वो करें।
हाँ, आप कहीं किसी भी मरकज से मराजे करेंगे, रेफर करेंगे, तो वो आपको वो टीम आपके लिए भेजेंगे जी।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम लोग स्प्रे करवाना है, ये अगर हम मसलन अपने घर में कर लें काफ़ी है या नहीं, पूरे मोहल्ले में?
अपने घर में कर लें तो ठीक है, वहाँ तो रुक जाएगी,
ठीक है,
लेकिन इसका यह है कि सॉरी, बाकी जो बाकी जगह है ना, उनको भी आपने कंट्रोल करना है। देखिए, हाँ, इसका देखो ना, आप एक जगह पे कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी जगह से इसका इश्यू तो आ रहा है जी,
मच्छर तो वो
हाँ जी, वो स्प्रेड कर रहा है, मुंतशिर हो रहा है, फैल रहा है, उसके फैलाव को हमने हर जगह से रोकना है,
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो है मौजू उठा था, और वो ये उठा था कि बावजूद इसके कि हुकूमतों ने जो है कुछ वो जो है पाउडर, कुछ चूने और इस तरह की चीज़ें जो है रोडों के किनारों पर वो जो है फेंकनी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि कंट्रोल उस सूरत में नहीं हो सका था, इसकी वजह क्या है?
एक वजह ये हो सकती है कि देखें, वो तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें की कि कुछ ऐसी चीजें शायद ये एज ए इंसेक्टिसाइड्स,
ठीक है,
यानी जरासीम कुछ के तौर पर में भी ये इफेक्टिव हों,
ठीक है,
लेकिन उन चीजों में ज्यादा मच्छर के ऊपर इफेक्टिव असर नहीं किया,
नहीं किया,
ठीक है, तो इसलिए मजबूर हो गया कि इन्होंने फिर मुख्तलिफ जो ड्रग कंपनीज हैं वो बड़ी एक्टिव हो गई कि भाई इतनी अमवात वाकई हो रही हैं तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके लिए फिर उन्होंने केमिकल्स बनाए,
ठीक है,
उन्होंने रिसर्च की,
ठीक है,
मच्छर का वो लार्वा प्यूपा लिया, उसके ऊपर उन्होंने वो केमिकल को उसका एक्सपीरियंस किया, तजुर्बा किया कि ये कौन सा केमिकल ऐसा है जो इसको मार सकता है,
ठीक है,
और जल्दी से जल्दी हम कंट्रोल पा सकें,
ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पानी पी लें, क्योंकि मुझे लग रहा है जो है आपको गला जो है थोड़ा सा खुश्क हो गया, आपसे काफी ज्यादा सवाल जो है मैंने पूछ लिए। डॉक्टर साहब ने यहाँ पर एक बड़ी अहम बात किया और वो ये है कि इसका स्प्रे जो आपने करना है वो स्प्रे खास जो है टीम को बुलाएं और थोड़े बहुत पैसे वो लेंगे और स्प्रे कर लेंगे, इससे कहते हैं कि जान से ज्यादा कोई अजीज चीज नहीं होती। बहरहाल कोशिश करें कि अपने इलाकों में इससे पहले कि जो ऐसा बरसात का मौसम शुरू हो तो बहरहाल जो है इसको स्प्रे कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, हम लोग इंशाल्लाह जो है गुफ्तगू को जारी रखेंगे। एक जो सवाल मैं इसके बाद उठाऊंगा वो ये है कि क्या अलामतें दिखने में मिलें जिससे हम ये समझ जाएं कि ये डेंगू वायरस है, टाइफाइड नहीं है या मलेरिया नहीं
जी,
है। इस पर हम बात करेंगे। अभी चलेंगे हम रुबाब की तरफ, देखते हैं रुबाब हमें कहाँ पर लेके जाएंगे।
बहुत शुक्रिया खुर्रम, हम आपकी बात में एक बात का जो है इजाफा करते चलूँ कि कराची के अंदर ऐसे खास प्रोग्राम्स मुंतकित हुए थे जिसके अंदर पीएफ म्यूजियम्स वगैरह के अंदर जो खास किस्म के स्प्रेस थे, वो जो दवाइयाँ थी उनको जो है वो मुफ्त में लोगों को दिया जा रहा था ताकि वो अपने घर में या मोहल्ले में इसका स्प्रे करें ताकि ऐसी जो अमराज है उनसे बच सके। खैर नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है खूबसूरत तराना सुनने का रजा सादिकी की आवाज़ में और थोड़ा स्टूडियो का माहौल इस डेंगू वायरस की जो ये टेंशन वाली बीमारी से बाहर निकल लेगा। लेते एक वक्त फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। ये खूबसूरत तराना आपने मुलाहिजा फरमाया जिसके अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि खुदाया मैं तेरा आशिक हूँ। बहुत ही खूबसूरत तराना, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। और नाज़रीन, गुफ्तगू चल रही है हमारी यहाँ पर डेंगू वायरस के बारे में, चलते हैं खुर्रम के पास ताकि वो इस गुफ्तगू को जारी रख सके। जी खुर्रम,
बहुत शुक्रिया रुबाब। और जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बड़ा जो है संजीदा किस्म का और बड़ा ड्रोना किस्म का एक ऐसे लगता है कि खाब सा है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब वहाँ पर थे और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अमवात इतनी हुई इस बीमारी की वजह से के जो है ख़ुद डॉक्टर्स जो हैं हॉस्पिटल्स में परेशान हो गए। पर डॉक्टर साहब, हम चलते हैं इसकी अलामतों की तरफ कि कैसे जो है इस वायरस को एक तो घर में और या आप लोग कैसे इसको बताते हैं कि भाई ये टाइफाइड नहीं है, ये मलेरिया नहीं है, ये डेंगू है
जी। इसमें जो अब आ जाता है, इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाती हैं, इसको हमने दूसरी बीमारी से कैसे डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले तो यह है कि डेंगू फीवर जो है इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लेटलेट काउंट है वो बहुत कम हो जाती है जी।
ठीक है, अच्छा ये प्लेटलेट डॉक्टर साहब बताते चलें हमारे नाज़रीन को क्या है।
हाँ, प्लेटलेट्स जो है एक्चुअली ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है
खून के अंदर होता है।
हाँ जी, ये खून को मुंजमद करके रखता है।
ठीक
है, जब ये 100,000 से 7,000 से नीचे आ जाता है,
ठीक है,
माइक्रोन पर माइक्रोन लीटर से नीचे आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ब्लीडिंग के चांसेस में भी हो सकते हैं।
अच्छा, यानी ये फैक्टर है जो हमारा जब चोट लगती है तो हमारा जो खून रुक जाता है,
रुक जाता है, इसमें इसमें जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें प्लेटलेट्स का एक बड़ा अपना रोल है जी। खुदावंद ने एक हर चीज के लिए, एक इंसान के लिए बहुत सी चीजें मैंने अतीय में दी हैं।
बिल्कुल सही
जी, अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है।
ठीक है सही।
तो प्लेटलेट्स काउंट इसमें कम हो जाते हैं, इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल जो हैं, व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं
जो दिफाई हमारा
जो दिफा करते हैं जी, बॉडी का डिफेंस करते हैं हमारे बहुत सी डिजीजेस में भी, तो वो कम हो जाते हैं। और इसके अलावा जब आप यूरिन का टेस्ट करते हैं उसमें ये आ जाता है कि इसमें जो प्रोटीन आती है, प्रोटीन यूरिया जो होता है, इधर यूरिन में प्रोटीन आ रही है जी, वो आ जाती है हेमाचूरिया, यूरिन में खून आ
जाता है,
हल्का आ जाता है, हल्का आ जाता है जी, जिससे जब हेमाचूरिया होगा आपके ब्लीडिंग हो रही है, गम से हो रही है, मसूड़ों से हो रही है जी जी, और सॉफ्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन्स जो थी वहां से हो रही है,
ठीक है सही है,
जी आई ब्लीडिंग होती है, मेदे से इसका ब्लड आ रहा है, तो इससे आपका ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसलिए वो ब्लड लॉस इसी वजह से हो रहा है कि इसमें ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं। वेसल्स डैमेज हो जाते हैं,
नसें
खराब हो जाती है, इसी नसों के खराब होने की वजह से जी आई ब्लीडिंग हो जाती है, और इसी की बेस पे इसको बोलते हैं डेंगी हेमरेजिक फीवर।
डेंगी हेमोरेजिक फीवर,
यानी ऐसा फीवर डेंगी का जिसमें खून आना शुरू हो जाता है, हेमोरेजिक के यानी खून का आना।
ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, घर में अभी एक शख्स को खुदा ना करे जो है डेंगी वायरस का हमला हो गया, पहली अलामत घर वाले क्या देखेंगे कि वो फौरन जो है लेके जाएं उसको डॉक्टर?
सबसे पहले तो इसमें ये है कि देखें सबसे जो इसकी आ जाती हैं अलामत जो आती हैं जी, बेसिक जो अलामत हैं इसमें क्लिनिकल फीचर्स में वो ये आती हैं कि सबसे पहले इसमें तो एक आएगा सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, यानी इसमें जो बुखार होगा वो अचानक होगा,
एकदम से ऊपर जाएगा
बगैर, हाँ जी हाँ जी, बगैर किसी और सिम्टम्स के एकदम सडन ऑनसेट होगा उसका, अचानक बुखार हो जाएगा, उसके साथ आपका जो होगा हेडेक होगा, सर दर्द होगा, और वो जो आपका हेड का जो बैक साइड है आपके ऑक्सीपिटल एरिया में,
अच्छा ये जो पीछे है कनपटी
जी जी कनपटी वहां पर होगा, ठीक है जी। उसके अलावा आपकी जो इसमें आईज में दर्द होगा, आपके सर दर्द होगा, और इसके अलावा वोमिटिंग होगी, यानी आपकी उल्टी आ सकती है, इसमें मतली हो सकती है आपको जी।
अच्छा, तो ये चीजें अगर आप देखें तो आप फौरी तौर पे जो है डॉक्टर के पास
जाइए, इसके लिए डॉक्टर को डेफिनेटली रेफर करना चाहिए, क्योंकि पुराने वक्तों में या इससे डेंगू से पहले तो चलो सिंपली बुखार होता है जी,
है।
उसको पेनाडॉल दे दी, इवन ब्रूफन दे दी, जबकि ब्रूफन इसमें सख्त मना है।
अच्छा,
हाँ ये मैं आपकी ट्रीटमेंट में आपको बताता हूँ, उसका
ट्रीटमेंट में हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक,
मैनेजमेंट में कैसे इसको करनी है जी।
सही है,
हाँ जी, तो उसमें थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे, ठीक है जी। अब इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये आता है कि पता नहीं चलता ये टाइफाइड है या डेंगू है जी, जब तक हम टेस्ट नहीं करवाते। इसका टेस्ट सीबीसी में करवाएंगे, इसके प्लेटलेट काउंट होगी जी कम हो जाएगी, व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाएंगे,
CBC करवाना है हमने
CBC
सबसे पहले,
जो है कंप्लीट ब्लड काउंट,
ठीक है
वो आपने सबसे पहले करवानी है,
ठीक है।
उसको डेंगू में आपने रिपीट करते रहना है,
ठीक है।
इवन अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इवन इंडिया में भी जो हमारे पास डॉक्टर्स आते रहे, CBC एक ऐसी चीज है जो आपको हर 3 घंटे बाद अगर आप रिपीट करते हैं, हर 5 घंटे बाद रिपीट करते हैं, वो आपको बताता रहेगा,
क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स भी दिखाए जाते हैं तो वो पता चलता रहता है कि प्लेटलेट्स कितने नीचे हो गए हैं
जी जी। और जब स्टार्ट होता है ये डेंगू फीवर तो ये CBC तीसरे दिन चौथे दिन आपको अलार्म ये शो करेगा, पहले दिन डेंगू फीवर में CBC कुछ नहीं बताएगा
इसका। हाँ अच्छा, CBC भी नहीं आपको कुछ बता सकता,
कुछ नहीं बताएगा,
ठीक है सही। लेकिन जो है पहला टेस्ट जो आप कह रहे हैं वो ये है कि फौरी तौर पे जो है CBC करवाएं,
CBC करवाएं,
आपको बुखार है आप, और रिपीटेड ये नहीं कि करवा लिया तो फिर अगले साल जाके दोबारा करवा रहे हैं,
नहीं नहीं नहीं, आपने इसको रिपीट करवाते रहना जी, उसी डेंगू उसी CBC की बेस पे ही आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको आपने डायग्नोज करना है, तशखीस करना है कि इसके CBC ब्लड काउंट कितने हैं, सॉरी प्लेटलेट्स कितने हैं,
ठीक है
व्हाइट ब्लड सेल कितने हैं, सॉरी, और इसमें जो हेमोग्लोबिन कितनी है, और इसमें हेमेटोक्राइट जो है वो 10-15% वो भी इफेक्ट हो जाती है, राइज कर जाती है,
खून से सारी मुतालिक चीजें जो आप बता रहे हैं, ठीक है सही। डॉक्टर साहब जारी रखेंगे हम गुफ्तगू को, इस वक्त अभी हम रुबाब के पास जाने, लेकिन उसके बाद जो है हम पूछेंगे कि इसमें क्या हल क्या है, ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करते हैं इसकी, और जो है क्या कॉम्प्लिकेशंस इस बीमारी की वजह से सामने देखने में आती है। अभी चलते हैं रुबाब के पास और देखते हैं रुबाब जो है हमारे लिए क्या लेके आएंगे।
बहुत शुक्रिया खुर्रम, आज मैं खबर लेके आई हूँ कुछ इस तरह से कि फ्रांसवियों ने, जो फ्रांसवी आवाम है, उसने एक नया रिकॉर्ड बना लिया, और रिकॉर्ड कुछ खास और अच्छा नहीं है, बुरा रिकॉर्ड है, लेकिन जी रिकॉर्ड कुछ इस तरह है, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ जो चलाई जाती हैं वो फ्रांस में चलाई जाती हैं, जिसका नतीजा एक्सीडेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कि काफ़ी अमवात भी जो हैं वो देखने में आई हैं। कहते हैं 2010 में और 2013 के दरमियान तकरीबन 60% जो है जो यहाँ पे एक्सीडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हुए, और इसमें कहीं से मासूम बच्चों की जो है वो जाने गई हैं सिर्फ तेज़ रफ्तारी की वजह से। तो फिर जो है फ्रांस की गवर्नमेंट ने सोचा, या जो वहाँ की हुकूमत है उसने सोचा कि क्या किया जाए और किस तरह इसका जो है वो हल निकाला जाए। कुछ कैमरे रहे थे, इन्होंने वो रोड पर लगा लिए, तो वहाँ की अवामी बड़ी होशियार थी, कैमरा देख के गाड़ी को बिल्कुल स्लो कर लेते थे और कैमरे के बाद फिर गाड़ी की स्पीड जो थी वो बढ़ जाती थी। फिर गवर्नमेंट ने सोचा भाई तो बड़ी तेज़ आवाम है तो कुछ और किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह किया कि जो फ्रांसवी पुलिस की गाड़ियाँ थी जो रोड पर इस तरह ही घूमती हैं या रोड के किनारे पर पार्क होती हैं, कुछ ऐसे कैमरेज उस पर लगा दिए गए जो इंसानी आँख बिल्कुल आराम से देख नहीं सकती। वो छोटे कैमरे ऐसे जैसे ही आपकी गाड़ी स्पीड से जाती है वो कैमरा वहीं पर रिकॉर्ड कर लेता है आपकी स्पीड को, और इस तरह से काफ़ी हद तक कहते हैं एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम हो गए। यहाँ तक कि कहा गया जो मोटरसाइकिल्स जो थी जो पुलिस की उस पर भी ये है जो कैमरे लगाए गए। कहा गया तकरीबन 2013 में 300,000 गाड़ियों को जुर्माना किया गया स्पीड की वजह से। जी हाँ, ये कहा गया, तकरीबन ये भी कहा गया है 40% जो है वो एक्सीडेंट्स पर काबू पा लिया गया इस हरकत की वजह से। और अब कहते हैं कि ये कैमरे जो है इंटरनेशनल तौर पर अब एशिया में भी आने वाले हैं, क्योंकि एशिया के भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बहुत तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाई जाती है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कैमरे वहाँ पर आ जाएँ ताकि हमारे अजीज़ जो आवाम है वो एक्सीडेंट वगैरह से बच सके। ये तो कुछ ठीक ताज़ी खबर थी आपके लिए नाज़रीन। लेते एक वक्फ़ा, कुछ खाने पीने की खट्टी मीठी बातें करते हैं। जी नाज़रीन, आज मैं आपको कुछ इमली की खसूसियात बताने जा रही हूँ कि इमली में ऐसी कौन सी ख़ास बात है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं इमली एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो तमाम किस्म के जो कैंसर जो होते हैं या सरतान जो होते हैं उनसे आपको बचा सकती है। इसके अलावा कहा गया है इमली के अंदर कैरोटीन, विटामिन बी और फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, जिसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। एक बात और कहा गया है कि इमली का इस्तेमाल बुखार में, हाँ ये तस्वीर जी, इमली का जो है उस इस्तेमाल बुखार में बुखार को काफ़ी हद तक कम कर देती है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम की भी शिकायत है तो इमली का शरबत पीजिए, लेकिन नीम गर्म पानी में, तो आपको बहुत आराम आएगा। कहा गया है अगर आप कोई भारी खाना खा लेते हैं या बहुत चिकना खाना खा लेते हैं तो इमली का इस्तेमाल आपके खाने को हजम करने में भी आपकी बहुत मदद करेगा। जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है वो इमली का इस्तेमाल करें, उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। ये भी कहा गया है कि इमली का जो है वो नीम गर्म पानी में आप उसका शरबत बनाइए और फिर उसके गरारे कीजिए। अगर आपका गला ख़राब है तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपकी स्किन कहीं पर जल गई है तो आप इमली का पेस्ट बना के उस स्किन पे लगा के हल्का सा मल लीजिए, जो आपका जो वो जल्द है वो जल्दी ठीक हो जाएगी और जलन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जिनको मतली या उल्टी की शिकायत है वो भी इमली का इस्तेमाल करें, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। ये कहा गया है गर्मी के अंदर आपका जिस्म यानी इसमें पानी कम हो जाए तो इमली के शरबत का इस्तेमाल भी आपके जिस्म के पानी को या आपके जिस्म को ठंडा रखने में बहुत मदद करता है। ये तो कुछ बात हो गई खट्टी मिट्टी इमली की, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इमली का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चलते हैं खुर्रम के पास ताकि वो गुफ्तगू को जारी रख सके।
बहुत शुक्रिया रुबाब जी, बिल्कुल मुफीद आपने बातें की। बहरहाल ये है कि जैसे कि आपने कहा ये जो पुलिस वालों के कैमरे जो हैं वो आ रहे हैं हमारी साइड पे भी, हमारी साइड पे जो है बहुत सी और चीज़ें हैं गाड़ियों की स्पीड को रोकने के लिए, जिसमें जो है गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और
नहीं, नहीं, मैं आपको सबसे पहला बता दूं, वो जो खड्डे जो हैं,
हाँ वो खड्डे खास होकर जिसमें जो है वो पूरी गाड़ी अंदर चली जाती है और फिर बाहर निकलती है, तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल इंशाल्लाह जो है पहले इन पर जो है थोड़ी सी तवज्जो देंगे और उसके बाद जो है कहीं किसी और लेवल पर हम लोग पहुँचेंगे। जी डॉक्टर जावेद हुसैन अख्तर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, डेंगू वायरस के बारे में हमारी बात हो रही है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब वक्त महदूद है और आपसे मैं पूछूंगा कि क्या इसके जो है, पहले तो हम ये बताएं डॉक्टर साहब कॉम्प्लिकेशंस इसके क्या हैं, ये अगर बीमारी आगे जाए तो किस क्या शक्ल इख्तियार कर लेती है?
हाँ जी, मैं कॉम्प्लिकेशन से पहले वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस सॉरी कह दूंगा कि डेंगू फीवर जो हमें डाउट हो जाता है वो एक तो इसमें डिफरेंशिएट करना है आपने मलेरिया से, स्पेशली मलेरिया से, टाइफाइड से, लेप्टोस्पायरोसिस हैं और कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो जिसमें फीवर हो जाता है, तो वो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को जहन में रखना है।
ठीक है सही,
ठीक है जी। कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि देखें कॉम्प्लिकेशंस में अगर हम उस डिज़ीज़ को कंट्रोल नहीं करते तो वो कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं।
ठीक है सही है,
ठीक है जी। अगर हम बुखार होता है उसमें सीरियस नहीं लेते तो वो कंटिन्यू रहता है, उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस में ये आ जाएगा कि उसमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा जी, जिससे पहले सिंपल डेंगू फीवर है जी, कंट्रोल नहीं कर रहे तो वो ब्लीडिंग आने की वजह से वो डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाएगा जी, यानी खून की वजह से जी।
ठीक है,
उसके अलावा जो इसके तीसरा कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है वो आ जाएगा कि डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाएगी। डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है उसमें ये हो जाता है कि चूंकि इसमें ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे जो होता है प्लाज्मा लीक होता है, प्लाज्मा लीकेज होता है और ब्लड लॉस होता रहता है, उस तरफ से ब्लड भी निकल रहा है प्लाज्मा भी निकल रहा है जी। इससे क्या होगा जी, ब्लड प्लाज्मा लीकेज से हाइपोटेंशन होगी, यानी ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा जी।
ठीक है,
ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है तो उससे फिर टैकीकार्डिया होगा, यानी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी उसकी।
अच्छा, ठीक।
दिल की धड़कन बढ़ती है तो पेशेंट उधर से, हाँ जी, एक तो वो दिल की तपेश काल या दिल की धड़कन बढ़ने से टैकीकार्डिया से उस पेशेंट को वो एक इज़्तिराब हो जाता है जी,
स्ट्रेस,
हाँ जी, एंजाइटी हो जाती है, इज़्तिराबी हालत आ जाती है, फिर यही एंजाइटी जो है लीड्स टू डिप्रेशन, वो एक डिप्रेशन का शिकार بیمار ہو جاتا ہے پیشنٹ.
اچھا یہ ساری چیزیں
ساری کمپلیکیشنز میں آ جاتی ہیں جی اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ پھر آ جاتا ہے جی اس میں جو آئرس ہماری جو آنکھ کے جو آئرس ہے وہ آئرائٹس ہو جاتی ہے, اس میں انفلیمیشن التحاب ہو جاتی ہے, سوجن سی آ جاتی ہے,
ورم آ جائے گا.
جی ورم آ جائے گا جس کو ہم جس میں یہ اپنا آربیٹل ایڈیما بھی ہم بولتے ہیں جی.
اچھا یہ آنکھ کی مشکلات بھی
جی مشکلات میں آ جاتی ہیں. اس میں آرکائٹس آ جاتا ہے اسپیشلی جو بچے ہیں یا بڑے ہیں اس میں جو ان کا جینیٹل ایریا ہے اس میں ٹیسٹیز میں انفلیمیشن سی آ جاتی ہے. تو اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کمپلیکیشن جن سے ہمیں بچنا چاہیے, اس لیے بیماری کو ہمیں شروع میں ہی سیریس لے لینا چاہیے.
ٹریٹمنٹ ڈاکٹر صاحب کیا؟
ہاں ٹریٹمنٹ اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ڈینگی فیور ہے اس میں آپ سب سے زیادہ جو رول ہے وہ پیراسٹامول کا ہے جی, پیناڈول جس کو ہم بولتے ہیں جی. پیراسٹامول آپ اس کو پریفر کریں گے ہم. اس میں اینسیڈ جو ہوتے ہیں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جس میں بروفن آتی ہے,
بروفن
نہیں دینی ہم نے, بروفن اس میں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے جی.
اینٹی بایوٹکس,
اینٹی بایوٹکس بھی نہیں دینی آپ نے کیونکہ اس میں ہم وائٹ بلڈ سیل آپ کے پہلے ہی کم آ رہے ہیں, پلیٹلیٹس کم آ رہے ہیں. اگر آپ اینٹی بایوٹک دیں گے تو ایڈورس افیکٹ ہوں گے اس کا, برا اثر برعکس اثر پڑے گا اس کا جی.
ٹھیک.
اور ہائپو ٹینشن کے لیے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ سیلائن دینے آپ نے, ٹھیک ہے جی, ڈرپ اس کے ڈرپ بچائے گی, نمک پانی ہوگا ڈرپنگ دیں اس کو, ڈیکسٹرول سیلائن وغیرہ دیں جی. اس کے ساتھ جو اس کا برننگ ہوتی ہے ہارٹ کی, ابڈومینل ابڈومینل کریمپنگ ہوتی ہے اس کے لیے اینٹاسڈ کوئی دے دیں, نیوکین سیرپ ہے یا ایسومیپرازول پی پی آئی ہے ہمارے پاس, ٹرائسل ہوگی جی اس میں ساتھ آپ دیتے ہیں, اینٹی ایچ ٹو ہسٹامین بلاکر رینیٹیڈین ہوگی وہ دے سکتے ہیں جی,
جلن کے لیے سینے کی
جلن وغیرہ کے لیے. ہاں جی یہ چیزیں آپ نے ان کو دینی ہے جی.
لیکن فوری طور پہ جو ہے ہاسپٹل لے جایا جائے,
ہاں ہاسپٹل میں ان ٹچ رہنا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا بڑی اہم موضوع تھا اور بڑی مفید آپ نے مختصر ٹائم میں جو ہے ہمارے ناظرین کی خدمت میں جو ہے ڈینگی وائرس کے بارے میں جو ہے گفتگو کی, اور امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی. اور ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ اس بار جو ہے برسات کا موسم, گرمیاں, بہار, اس میں جو ہے اس ڈینگی وائرس کی کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. جی رکو
بہت شکریہ خورم, میں بھی ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ بہت کم وقت میں جو ہے اہم نکات کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا. اور یہاں پہ محمد باقر صاحب نے ہمیں کمنٹ کیا ہے کہ انہیں ہماری گفتگو بہت پسند آ رہی ہے, بہت شکریہ, اسی طرح کمنٹ کرتے رہیے. لیکن ناظرین یہاں وقت ہوا ہے آپ کو ایران کی کچھ صحراؤں کی سیر کرانے کا, لیتے ایک وقفہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پروگرام سب و زندگی میں. ایران کے کچھ خوبصورت سیرا کے جو مناظر ناظرین نے ملاحظہ فرمایا, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوں گے.
جی کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم پہ جو ہے صحراؤں میں اگر آپ ہو سکے سٹے کر سکیں رک سکیں وہاں پر تو آسمان جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. بہرحال وقت ہمارے پاس محدود ہے, جناب عقیل عباس معروفی صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں, میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں مولانا صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ,
شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا. اور تحصیل تعزیت پیش کرتا ہوں بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی شہادت کے ایام شہادت جو ہے اس سلسلے میں.
میں بھی آپ تمام حضرات کو اور بالخصوص سامعین محترم کی خدمت میں اور عالم تشیع کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے موقع پر
بہت شکریہ. میں بھی عرض ادب کرتی ہوں آپ کی خدمت میں مولانا صاحب, جو کہ آپ ہمارا جو یہ ہفتہ چل رہا ہے ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت پر ہر پہلو سے روشنی ڈال رہے ہیں. اور آج کا جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے بی بی فاطمہ زہرا, ایک ماں کی جو ان کی جو آپ بول سکتے ہیں کردار, ماں کے کردار میں جو ہے ماں کے طور پہ ان کی زندگی پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ماں کی حیثیت سے میں چاہوں گا سب سے پہلے یہ بتانا کہ ماں کہتے کسے ہیں. ماں یعنی پیار اور محبت کے سائے میں ایک ہدایت کی کتاب ہے. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ ماں فقط پیار اور محبت ہی دیتی ہے, ماں پیار اور محبت اور آزادی کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی تعلیم دیتی ہے اور وہ کتاب ہدایت ہے.
بہت
خوبصورت. اس روشنی میں ماں کا مہذب اور تعلیم یافتہ ہونا اور دین و مذہب سے آگاہی ضروری ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی ماؤں کے لیے اور ایک ماں ہونے کے اعتبار سے چند اعتبار سے آئیڈیل اور نمونہ اور اسوہ ہیں. آپ اس اعتبار سے بھی اسوہ ہیں کہ ایسی اولادوں کی تربیت کی ہے جس سے عالم اسلام پوری کائنات بہرہ مند ہو رہی ہے. آپ نے ثابت کر دیا کہ پردہ اور پاک دامانی کے ساتھ رہ کر بھی ایسے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کی جا سکتی ہے जो पूरी कायनात के लिए आइडियल और रहबर बन सके।
सही।
आप निगाह करें, अगर आशूरा का वाकया ना होता और ज़ैनब कुबरा, उम्मे कुलसूम की तकरीर और खुतबे का इनको मौका न मिलता,
सही,
तो शायद तारीख इनके इल्मी मकाम, इनके अजमत और इनके पाकदामनी का इतना अंदाजा न लगा सकते।
बिल्कुल सही।
और ये भी नहीं था कि बीबी फातिमा तो जहरा के लिए सारे मौके आसान थे, सख्त थे, सख्त हालात शराइत में,
सही,
चाहे वो इक्तिसादी हालात हों या हालात बहुत ही नाअमन हों, ऐसे हालात में भी आपने ऐसे पाक व तैयब व ताहिर और बाफजीलत अफराद की तरबियत की है और ये बता दिया कि सख्त से सख्त हालात में भी तैयब व ताहिर और बाफजीलत औलादों की तरबियत की जा सकती है।
सही।
आपकी जिंदगी में माँ के उनवान से जो बात काबिले गौर है और जो दिक्कत तलब बात है, किस तरीके से अमली तरबियत अपनी औलाद की है और इस तरबियत के साथ साथ भी, फर्जंदारी के साथ साथ भी, खुद अपने न इबादी पहलू से गाफिल है, न तरबियती पहलू से, वज़ायफ से, और न ही सियासी वज़ायफ से गाफिल है। देखने को मिलता है, तारीख बताती है कि रात रात इबादत की, रात से सुबह तक इबादत में मसरूफ रही, खुजू खुशु, जिक्र इलाही और कुरान मजीद की तिलावत करती रही, और उसमें भी क्या देखने वाले ने, बच्चों ने देखा कि पड़ोसियों के लिए दुआ कर रही हैं। तो इससे अपनी औलाद को जो तरबियत दी, अमल करके दिखाया कि इबादत के साथ साथ, यानी इन बच्चों को इबादत करे, अपने परवरदिगार से राजो न्याज करे, जिक्र इलाही में मसरूफ होने के साथ साथ भी एक इंसान को दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए।
सही।
खुद रात भर नमाज पढ़ के और उसमें अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करना, अमल करके अपनी औलाद को ये बता दिया कि दूसरों का भी ख्याल रखना जरूरी है।
बहुत
और उसके साथ ये बात भी आपने बता दी कि जब एक नाबीना सहाबी आया तो अपने को मख्फी करके और ये कहा कि अगर वो नहीं देखते, मैं तो देखती हूँ। इस अमल के जरिए से अपनी बच्चियों को, कायनात की बच्चियों को और आलम इस्लाम की ख्वातीन को ये बता दिया कि इफ्फत व पाकदामनी जरूरी शय है। हत्ता बीवी फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए जो तरबियत, औलाद की तरबियत इबादी पहलू से कैसे की, रवायत में तारीख ने लिखा है कि माह मुबारक रमजान में 22 रमजान को, यानी शबे 23 के लिए किस तरीके से उन्हें आमादा करती थी।
सही है।
लिखा है कि खुद 22 रमजानुल मुबारक को बीवी फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बच्चों को दिन में सुला दिया करती थी ताकि रात को बच्चे जगकर अल्लाह सुभान व तआला की इबादत करें और इस मुकद्दस रात से पूरा फायदा उठा सकें।
हत्ता
जब रात होती थी तो कम खाना खिलाती थी ताकि उन्हें रात में नींद ना आ सके और पूरी तरीके से इस शबे कद्र से फायदा उठा।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकील अब्बास मारूफी साहब, बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जो है, हमारी तो सुबह बन गई और इंशाल्लाह जो है हमारे नाज़रीन को भी आपकी गुफ्तगू पसंद आएगी। शुक्रिया आपने वक्त दिया जी। तो ये जो हमारे साथ जो है जनाब अकील अब्बास मारूफी थे और उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की हमारे साथ। कल के हमारे मेहमान हैं शबर अली जो है इंशाल्लाह हमारे साथ स्टूडियो में होंगे और इंशाल्लाह जो है शहादत के सिलसिले में भी, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की शहादत के सिलसिले में उनसे हम गुफ्तगू करेंगे।
बस इस दुआ के साथ आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और आपकी खूबसूरत सी मुस्कुराहट हमेशा कायम और दायम रहे।
मुझे रुबाब मंसूरी को प्रोग्राम सुबह जिंदगी से इजाजत दीजिए। खुदा।